ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद्भागवतम तीसरा अध्याय तीसरे स्कंद अध्याय 33 श्लोक 30। एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेन अचिरत परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तं अवपाहम्। अनुवाद उत्तर पर या शिला ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की हे विदुर, कपिल द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए देवहूति शीघ्र ही भाव बंधन से मुक्त हो गए और बिना कठिनाई के परमात्मा स्वरूप भगवान को प्राप्त हुई। तत्पर्य इस प्रसंग में देवहूति की उपलब्धि को बताने वाले तीन शब्द प्रयुक्त हुए हैं, आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं तथा भगवंतम। ये परम सत्य की खोज की क्रामिक विधि को बताता है जिससे भगवंतम कहा गया है। भगवान विविध वैकुंठ लोक में वास करते हैं। निर्वाण का अर्थ है संसार के क्लेशों का समन। जब कोई वैकुंठ को जाता है तो वो सारे क्लेशों से स्वतः मुक्त हो जाता है, यही ब्रह्म निर्वाण है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार निर्वाण का अर्थ है भौतिक जीवन का अंत। आत्मनाम का अर्थ है हृदय के भीतर परमात्मा का साक्षात्कार। अंत तथा परम स्थिति तो भगवान का साक्षात्कार है। यह समझ लेना चाहिए कि देवहूति उस श्लोक में प्रविष्ट हुई जिससे कपिल वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ लोगों की संख्या अनंत है, जिनमें विष्णु के अंशों का प्राधान्य रहता है, जैसा कि ब्रह्म संहित से ज्ञात होता है। अद्वैतम अच्युतम अनाद्यम अनंत रूपम। अनंत का अर्थ है असंख्य। भगवान के दिव्य स्वरूप के असंख्य विस्तार होता है और अपनी चार भुजाओं में विभिन्न चिन्ह को धारण करने के कारण वे नारायण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव आदि कहलाता है। कपिल वैकुंठ नाम से भी एक वैकुंठ है जहां देवहूति कपिल से मिलने और अपने दिव्य पुत्र की संगति का आनंद लेने के लिए भेज दी गई। हे विदुर, कपिल द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए देवहूति शीघ्र ही भाव बंधन से मुक्त हो गए और बिना कठिनाई के परमात्मा स्वरूप भगवान को प्राप्त हुई। तो देवहूति उत्तम अवस्था पर पहुंच गई थी और तो ऐसा लगता है कि सदन के द्वारा उत्तम अवस्था पर पहुंच गई थी, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए, जैसे तत्पर्य में भी कहता है श्रील प्रभुपाद कि देवहूति तो कपिल मुनि के जो वैकुंठ लोक में, वहां पर नाम है वैकुंठ, कपिल वैकुंठ में वहां पर वास करती है। तो ये नित्य सिद्ध परिकार है देवहूति। जैसे गोलोक वृंदावन कृष्णा विराजमान है उनके नित्य सिद्ध परिकार के साथ, श्रीमती रानी गोपियां देवहूति, ये यशोदा माई, नंद बाबा, ये हमेशा वहां पर उपस्थित है और सेवा में लीन है। ये नित्य सिद्ध परिकार। वैसे ही द्वारका में द्वारकाधीश कृष्णा है, भगवान के विस्तार रूप है वासुदेव कृष्णा और वासुदेव देवकी और उनके पत्रानियां वहां पर हमेशा सेवा में लीन है। ये नित्य सिद्ध परिकार है। तो नित्य सिद्ध मुक्त है। तो कभी नहीं इस बाधावस्त में पहुंचता है, हमेशा सिद्ध है। तो वैसे ही वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के अलग अलग तो लोक है, अलग अलग नामों के है, जैसे कपिल मुनि है और जहां पर प्रभुपाद बताता है नारायण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव इत्यादि। तो भगवान क्योंकि जिस हाथ में उनके अलग अलग जिससे ये धारण करते हैं चिन्ह, जैसा कमल पुष्प उनके और चक्र और शंख और गदा जिस हाथ में तो रखता है, इसके अनुसार उनका नाम है। ये भी चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज को स्वामी ने उन्होंने उल्लेख किया है, उन्होंने लिखा है इसमें। तो वहां पर विष्णु रहता है और उनके नित्य सिद्ध परिकार उनके साथ है। लक्ष्मी देवी हर लोक में, विष्णु लोक में एक लक्ष्मी देवी है। और ये तो विष्णु सब कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के विस्तार रूप है और सब लक्ष्मिया श्रीमती राजानी के विस्तार रूप है। मूल रूप है कृष्ण और मूल शक्ति है श्रीमती राजानी। और वैसे उनके परिकार जो है ये नित्य सदी परिकार है आध्यात्मिक जगत में। तो वैसे ही देवहूति ये कपिल देव के नित्य सिद्ध परिकार है, उनके माँ है। और लेकिन जब यहां पर आता है उनके अविभाव है, उसी समय भी कपिल देव की माँ देवहूति आ जाती है। और ऐसा लगता है कि सदन के द्वारा उत्तम अवस्था पर पहुंचती है। लेकिन ये उदाहरणार्थ के लिए हमको दिखाने के लिए कि कैसे साधन भजन करना है। और जैसे अर्जुन भी कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकार है, लेकिन कभी कभी ये भी ऐसा लगता है कि उनको ना मालूम है कि क्या करना है क्या ना करना है। और युद्ध से पहले जैसे भगवद गीता के समय जब कृष्ण ने तो अर्जुन को बताता है भगवद गीता, तो पूछताछ कर रहा है अलग अलग प्रश्नों के पास है। ले वास्तव में तो हमारे लिए है, बद्ध जीव के लिए है, जिससे वह आगे जा सकता है इसके सुनकर। वैसे ही यहाँ पर कपिल देव के जो उपदेश है ये वास्तव में बद्ध जीव के लिए है, जिससे वह आगे जा सकता है और उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। और यहाँ पर प्रोपद उन्होंने लिखा है और श्लोक में है तीन शब्द दो जो महत्वपूर्ण है, आत्मनम ब्रह्म निर्वाणम एवं भगवंतम। तो ब्रह्म निर्वाणम तो वास्तव में ये पहले पाद है। तो ये मायावादी लोग है, निर्विशेषवादी है, जो उनके मत है, उनके मत है कि परम सत्य तो है, आध्यात्मिक वस्तु है, लेकिन निराकार, उनके कोई रूप ना है, परम वस्तु के परम तत्व के परम ब्रह्म के कोई रूप नहीं है। और ये भी कहता है कि आत्मा के कोई स्वरूप नहीं है, एक वस्तु तो है लेकिन कोई रूप नहीं है। तो जीवात्मा जो है भगवान के विभिन्न अंश है, भगवान के अंश है, लेकिन ये परम सत्य के अंश है, परम तत्व के अंश है। ये भी कहता है लेकिन ये मानता है कि उनकी कोई स्वरूप नहीं है भगवान के, ये परम सत्व के, परम तत्व के, परम ब्रह्म के। वैसे ही आत्मा के कोई स्वरूप नहीं है। तो ये मायावादी है, निराकारवादी है, निर्विशेषवादी है। और उनकी परम गति यह है परम तत्व में लीन हो जाना। तो ये ब्रह्म निर्वाणम इसका नाम है। ये श्रीमद् भागवतम में भी उल्लेख किया है कि जो आध्यात्मिकवादी जो है तीन प्रकार के हैं, ब्रह्मा परमात्मा भगवान इति शब्द्यते। तो मानता है कि परम वस्तु है, आध्यात्मिक वस्तु है, लेकिन कोई उनके कोई रूप नहीं है। तो ये पहले पाद है, लेकिन इसके आगे जो है जो मानता है कि परमात्मा है सबके दिल में है, और ये भी उनके रूप है, विष्णु मूर्ति है और सबके दिल में विराजमान है परमात्मा, और हम उनका ज्ञान भी करना है। लेकिन भी यहाँ पर जैसे ब्रह्मवादी भी कि अलग अलग प्रकार के है, जैसे मायावादी है, निर्विशेषवादी है, तो अलग अलग के है, उनके अलग अलग मत भी है। और वैसे ही परमात्मावादी जो भी है उनके भी अलग अलग है, उनके अलग अलग मत भी है। कोई भी है जो सोचता है कि ठीक है परमात्मा तो है अभी, लेकिन बाद में इसमें भी लीन होने चाहिए परमात्मा में। लेकिन जो मानता है कि उनके स्वरूप है परमात्मा के चतुर्भुज विष्णु मूर्ति है और आत्मा जीवात्माओं के भी स्वरूप है, लेकिन उनके पास पूर्ण ज्ञान नाय है। और ये भी है कि वास्तविक संबंध परमात्मा के साथ नाय है, सिर्फ जब भौतिक जगत प्रकट है उसी समय सबके दिल में विराजमान है, पशु पक्षी के दिल में भी है, सर्वव्यापी है, क्षीर रक्षा है विष्णु परमात्मा। लेकिन सिर्फ जब भौतिक जगत प्रकट है उसी समय सबके साथ है और सहायता देता है जिससे वे आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। लेकिन जब ये भौतिक जगत अप्रकट हो जाता है उसी समय क्षीर रक्षा विष्णु ये महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करता है और महाविष्णु ये महाशंकरशन के शरीर में प्रवेश करता है। और जो जीवात्मा जो है उनके संबंध है कृष्ण के साथ या रामचंद्र के साथ या विष्णु, अलग अलग विष्णु लोक में चतुर्भुज विष्णु उनके अलग अलग नाम भी है, उनके साथ ये नित्य संबंध है। जीवर सुपो नित्य कृष्ण दास, सब तो कृष्ण के दास है या उनके विस्तार रूप के दास है। तो ये उत्तम अवस्था है भगवान तम, जो जब मालूम है जब अनुभव कर सकता है कि भगवान है, उनके विग्रह है सच्चित आनंद विग्रह है, वास्तव वस्तु है और हम उनके नित्य दास है और हमारे भी सच्चित आनंद विग्रह है और नित्य संबंध है कृष्ण के साथ या रामचंद्र के साथ या विष्णु के साथ। और तो इसका अनुभव हमको करना चाहिए, ये वास्तविक आत्म साक्षात्कार है और भगवान का साक्षात्कार है और अपना आध्यात्मिक संबंध उनके साथ इसका अनुभव करना है, ये परम गति है। तो इसका अनुभव करना है तो भक्ति मार्ग में भी जब समझ सकता है कि भगवान है और हम भगवान के अंश है, उसी समय भी अलग अलग अवस्था है। तो सबसे पहले अवस्था है, ये भी तीन अवस्था है, संबंध अभिधेय एवं प्रयोजन अवस्था है। संबंध ज्ञान, पहले मालूम होता है कि भगवान है, हम भगवान के दास है और दुर्भाग्यवश से हम इस भौतिक जगत में पूंज गया है, लेकिन हमको भजन करते हुए वापिस जा सकते भक्ति जब भक्ति करना है इसके फलस्वरूप जब अच्छे तरह से साधन भजन करता है गुरु और कृष्ण के कृपा से तो इसका अनुभव भी कर सकता है। लेकिन पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और साधन भजन करते हुए आगे जा सकता है। तो पहले संबंध ज्ञान, संबंध मालूम होना चाहिए कृष्ण के साथ और कि हमको सन भजन करना है। और इसके बाद दूसरे वास्ते अभिधेय, तो यह है कि जब भजन करता है गुरु के आदेश अनुसार अच्छे तरह से तो इसके बाद तो अनुभव कर सकता है जो हमने सुना है कि हम शरीर नहीं है आप भी तो आत्मा है और भगवान के स्वरूप का अनुभव भी कर सकता है और तो आध्यात्मिक दर्शन जो है इसका अनुभव कर सकता है भजन करते करते अच्छे तरह से। और इसके बाद तो उत्तम अवस्था पर पहुंच सकते प्रयोजन ज्ञान, प्रयोजन तत्व, जब आत्म स्वरूप प्रकट हो जाता है और भगवान का साक्षात स्वरूप का अनुभव कर सकता है, ये उत्तम अवस्था है। और तो अंत में उस अवस्था पर पहुंचना चाहिए, इसके बाद तो भगवान के पास जा सकता है, लीला में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। तो प्रभुपाद ने लिखा है स्वरूप सिद्धि अवस्था है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी उन्होंने लिखा है ये स्वरूप सिद्धि अवस्था है। इसके बाद वस्तु सिद्धि पर पहुंच सकता है, कृष्ण की सेवा में तो कृष्ण की लीला में भाग ले सकता है, इसमें आ सकता है। तो तो अंत के समय यहां पर भी लिखा है, तो अंत के समय जीवन के अंत के समय तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, अंत नारायण स्मृति। अंत के समय जब शरीर छोड़ना है देहांत के समय हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए, स्मर्तव्य सततव विष्णु विस्मर्तव्य अनुजातु चित। तो इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। तो जब जो भी अवस्था है और जो अवस्था में हो और इसके बाद बच्चे भी उनको भी भजन करना है थोड़ा सा, तो बहुत कुछ उनको भी बताना है, क्योंकि अंत समय कब है हमको नहीं मालूम है। इसलिए हर समय हमको भजन करना चाहिए, लेकिन जब गृहस्थ आश्रम है उसी समय अलग अलग कर्तव्य भी है, तो इसका भी देखभाल करना चाहिए पारिवारिक के और सामाजिक के। लेकिन सदन भजन करना चाहिए सुबह शाम को और दिन में भी हमको चेष्टा करना चाहिए भगवान का स्मरण। ऐसा करते हुए अंत के समय भगवान का स्मरण कर सकता है और भगवान का नाम का उच्चारण कर सकता है, अन्यथा तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर देवहूति उत्तम वैष्णव तो है और भगवत धाम वापिस गए और आज भी शिला रसिकानंद प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, आज भी उनका उनकी तिरुवाप तिथि है और शिला जगन्नाथ बाबू जी महाराज के भी तिरुवाप तिथि है और शिला तमकृष्ण गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद के एक शिष्य प्रधान शिष्य थे, उनका भी तिरुवाप तिथि है। तो इसके बारे में दो तीन शब्द भी अभी बताएंगे। तो सबसे पहले रसिकानंद प्रभु एक बहुत प्रसिद्ध भक्त थे और उड़ीसा के भक्त थे। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पास ये भी लिखा है चैतन्य चतुर्मृत में कि उनके ओरिया भक्त थे और गौरिया भक्त थे, बंगाल के भक्त थे गौरिया भक्त और उड़ीसा के भक्त थे ओरिया भक्त। लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा भारतवर्ष के भ्रमण करते थे और उनके भी जैसे महाराष्ट्र में भी वे भी वहां पर गए और वहां पर भी प्रचार किए। उनके प्रभाव से बहुत सारे भक्त लोग वहां के और दक्षिण भारत के भक्त लोग भी भक्त बन गए थे। जैसे तुकाराम एक प्रसिद्ध भक्त, ये भी उनसे मिले थे महाप्रभु से और परम वैष्णव बन गए और अच्छी तरह से वहां पर प्रचार करते थे। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध वक्त है। तो वैसे ही तो यहाँ पर ओरिया में श्री रसिकानंद प्रभु एक उत्तम वैष्णव थे और ये प्रसिद्ध श्यामानंद प्रभु के शिष्य थे। श्यामानंद प्रभु प्रसिद्ध वक्त थे। ये गोरीदास पंत हृदय चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के परिकार के जो सख्य बाप के भक्त थे, गुणिताय के भक्त थे, सख्य बाप में थे, उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था तो दुखी कृष्णदास। और लेकिन उनके आदेश से वहां पर आए वृंदावन में और श्री जीव गोस्वामी के पास पहुंच गए। उनके शरण लेते हुए भजन करते थे और उनके श्यामानंद प्रभु ये गोपी बाप के भक्त थे, मधुर्य बाप के भक्त थे। तो श्री जीव गोस्वामी के कृपा से भजन करते थे और ये भी नित्य सिद्ध परिकार है, लेकिन हमको दिखाने के लिए कैसे भजन करना चाहिए ये भी अवतारित होता है और जीवदाया देने के लिए आता है। ये भगवान के नित्य सिद्ध परिकार। और एक बार यहाँ पर वृंदावन में राधा श्याम सुंदर मंदिर में जारू सेवा करते थे राधा श्याम सुंदर के लिए। तो सिसे माए नूपुर के छोटी क्या क्या कहता है ये बैल गुंगरू गुंगरू मिले थे और तो उसी समय एक गोपी आई थी और उनसे पूछा था कि अच्छा तो यहाँ पर गुंगरू मिला है तो रसिकन ये दुखी कृष्णदास ने बोला हाँ हाँ मिला है तो ये हमारे सखी के है तो मेरे को दे दो ये तो दुखी कृष्णदास ने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा ये जिसका है तुमको आने दो तो उसको जरूर दे दूंगा। तो कुछ देर के बाद ये सखी फिर से आई दूसरों के सखी के साथ और उसी समय तो ये सखी बोली ये तो हमारा है तो मेरे को दे दो तो दे दिया। और इसके बाद ये श्रीमती राजरानी थी और भावभोग होकर तो यहाँ पर उन्होंने भी समझ लिया अनुभव किया है कि ये श्रीमती राजरानी है। और इसके बाद तो इस गुंगरू से तिलक बनाया है ये उनके अभी भी है श्यामानंद प्रभु के जो उनके शिष्य परंपरा में है ये सब ऐसे अलग से थोड़ा सा हमारे तिलक से थोड़ा अलग से है श्यामानंद प्रभु के शिष्य परंपरा में। तो इसे तिलक बनाई थी ये श्रीमती राजरानी और इसके बाद दुखी कृष्णा फिर से जीव गोस्वामी के पास पहुंच गए और दूसरे भक्त लोग ने देखा उनके पास भी अलग सा तो तिलक है तो क्यों ऐसा किया है ये तो ठीक नहीं है और ऐसा नहीं कहना चाहिए आपने गुरु माच से तिलक मिला है और तो ये बरने उचित नहीं है तो दूसरे भक्त लोग भी ऐसे बोलते थे। लेकिन जीव गोस्वामी के स्वप्न में श्रीमती राजरानी आई और बोली कि मैंने ऐसा किया है तो ये हमारे परम भक्त है। तो इसके बाद जीव गोस्वामी दूसरे भक्त को बताए गए थे कि तो ये श्रीमती राजरानी की कृपा है तो उन्होंने ऐसा किया है। तो इसके बाद भी जीव गोस्वामी उनको बुलाए थे श्यामानंदा उनको भी बोला ये आपके सौभाग्य है कि श्रीमती राजरानी आई है और ये तिलक ऐसा बनाया है तो और मैं तुमको ये अभी दूसरा नाम भी देता हूँ श्यामानंदा। तो इस समय से श्यामानंद प्रभु से प्रसिद्ध हो गया है। तो इसके बाद अजीब गोस्वामी भी उनको भेज दिया प्रचार करने के लिए श्यामानंद प्रभु नरोत्तम और श्रीनिवास आचार्य और कोई किताब लेकर यहाँ से चले गए थे और प्रचार करने के लिए ये और नरोत्तम गए ये वहाँ पर असम और गुवाहाटी पे वहाँ पर ये असम और मणिपुर की ओर चले गए थे नरोत्तम और श्रीनिवास आचार्य बंगाल की ओर गए थे प्रचार करते थे। और रसिकानंद ओरिसा की ओर ये श्यामानंद प्रभु और रसिक ये ओरिसा की ओर चले गए थे और वहां पर अच्छे तरह से प्रचार करते थे और बहुत भक्त लोग उनसे प्रभावित हो गए थे। और तो उनके पास तो बहुत सारे शिष्य थे और प्रसिद्ध शिष्य थे उनके ये रसिकानंद प्रभु और क्योंकि श्यामानंद तो कभी कभी दूर से वहां पर तो प्रचार करने के लिए गए थे और इसलिए उनको भी आदेश दिए थे रसिकानंद को कि आपको भी दीक्षा देना है क्योंकि आप महान भक्त है और उत्तम अवस्था के है और आप अच्छे तरह से प्रचार कर रहे हैं तो इसलिए आपको भी दीक्षा देना है क्योंकि तो वास्तव में ऐसा नहीं होता है जब गुरु है दीक्षा गुरु है उसी समय शिष्य उनके लिए खुद शिष्य बनाने के लिए तो उचित नहीं है सिर्फ जब आदेश देते हैं उसी समय संभव है। तो श्यामानंद प्रभु तो आदेश दिए थे रसिकानंद को कि आपको भी शिष्य बना सकता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है आजकल हमारे आंदोलन में भी है दो चार भक्त है जो उनके गुरु महाराज भी है और फिर भी ये भी दीक्षा देता है। तो जब गुरु के आदेश है तो संभव है। तो खूब प्रचार करते थे रसिकानंदा और उनका वास्तविक नाम थे पहले सबसे और दूसरा नाम भी थे रसिक मुरारी। तो रसिक मुरारी उनका दूसरा नाम है। तो परम वैष्णव है तो और परम वैष्णव का नाम इसलिए भी दिया गया है कहलाता है रसिक वैष्णव। मतलब इसका अर्थ है कि ये भक्त लोग अपना आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव किया है और कृष्ण का साक्षात स्वरूप का अनुभव किया है। तो उसी समय जब सेवा होता है तो अनंत पूर्वक जब होता है उसी समय रास उत्पन्न होता है। तो इस रास में लीन है ये रसिक वैष्णव है। और तो दूसरे जगह है लेकिन उत्तम अवस्था के उत्तम श्रेणी के नाय है ये भावुक वैष्णव जो भाव अवस्था में है। तो ये रसिकानंद उनका नाम है। तो रसिक मुरारी रसिकानंद ये रसिक वैष्णव थे। और ये अच्छे तरह से भी उनके ये ऋषमानंद उनके एक ठाकुर जी उनके पास थे। उनका नाम था गोविंद जी गोविंद देव। तो रसिकानंद गोविंद देव की सेवा भी करते थे अच्छे तरह से। और रसिकानंद शक्तिशाली थे और 40 साल के लिए यहाँ पर उड़ीसा में प्रचार करते थे। और उनसे बहुत सारे ये ऐसा नाय है कि ये और ये भी कहा जाता है कि ये राजा के लड़के थे लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिए थे और सिर्फ प्रचार में लीन थे। सरल विधि से रहते थे और उनके प्रभाव से बहुत सारे लोग भक्त बन गए थे। मुसलमान के परिवार से भी और शूद्र के कुल के भी और नास्तिक लोग भी उनसे प्रभावित होते हुए भक्त बन गए थे। और एक बार भी एक हाथी उनके पास तो आए और उनके प्रभाव से ये भी विनम्र भाव से भगवान का नाम का उच्चारण भी करते थे कहा जाता है। तो उनके प्रभाव से बहुत सारे भक्त लोग भजन करते थे। और अंत के समय एक प्रसिद्ध जगह रेमुना में जहां पर क्षीरचोर गोपीनाथ विराजमान है यहां पर उनके गुरु महाराज भी उनका समाधि है। उनका शरीर वहां पर चोर दिए थे ये श्यामानंद प्रभु। और वहां पर भी रसिकानंद प्रभु उनके शिष्य के साथ वहां पर कीर्तन करते थे। उनके अंत के समय कीर्तन करते करते भाव विभोग होकर ये क्षीरचोर गोपीनाथ के शरीर में प्रवेश किए थे। और ये देखकर कि रसिकानंद अप्रकट हो गया है तो उनके शिष्य भी तो विराह भाव में आ गए और सब वहां पर छोड़ दिए अपने करताल मृदंगा और खुद अपने शरीर भी वहां पर छोड़ दिए थे। चार पांच उनके घनिष्ठ ये शिष्य थे। और वहां पर इसके बाद दूसरे भक्त लोग पुष्प समाधि बनाए थे वहां पर ये रसिकानंद उनकी पुष्प समाधि वहां पर श्यामानंद प्रभु ये के उनके समाधि के पास बनवाए थे। और दूसरे यहां पर क्षीरचोर गोपीनाथ मंदिर में उनके यहाँ पर उनके शिष्य के पुष्प समाधि है, चार पांच शिष्य है, चार पांच शिष्य है। और हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे ये वहां पर उनके शरीर छोड़ दिए थे और अप्रकट हो गए थे रसिकानंद, और ऐसा नहीं है कि तो इस क्षीरचोर गोपीनाथ में लीन हो गए थे, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि ये कृष्ण के परम भक्त थे, उनके नित्य सिर परिकार है और गोपी बाब में थे, और तो मतलब जैसे जब कोई महान भक्त शरीर छोड़ता है उसी समय भक्त लोग इसके बाद कहता है नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद, तो नित्य लीला में प्रविष्ट है, प्रवेश किया है और सेवा करने के लिए। लेकिन तो ऐसा कहता है, लेकिन वास्तव में हमको भी मालूम है कि ऐसा ना है कि जब यहाँ पर आता है उनके नित्य सिद्ध परिकार भगवान के, जैसे जब यहाँ पर आए थे कृष्णा और महाप्रभु भी, ऐसा ना है कि वहां पर आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में नवद्वीप में वहां पर ना है, कृष्णा वहां पर है, वहां पर भी है और उनके नित्य सिद्ध परिकार भी हमेशा वहां पर सेवा में लीन है आध्यात्मिक जगत में, लेकिन यहाँ पर भी प्रकट हो जाता है। तो कभी प्रकट है वो, दूसरे समय भी अप्रकट हो जाता है यहाँ पर, जैसे कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु वैसे ही ये आता है और चले जाता है वहां से। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नित्य लीला में फिर से तो प्रवेश कर रहा है। तो हाँ, तो आज उसी दिन उनसे निवेदन करता है जिससे हम अच्छा तरह से आगे जा सकते भक्ति मार्ग में और गौरलीला में लीन हो सके, और अंत में कृष्ण लीला में भी लीन हो सके, और अंत के समय तो भगवान के पास पहुंच सके। तो रसिकानंद से निवेदन करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, श्री रसिकानंद प्रभु की। तो आज जगन्नाथ दास बाबा जी के भी तिरुभाव तिथि है, ये भी उत्तम वैष्णव थे, सिद्ध महापुरुष थे, नित्य सिद्ध परिकार थे, कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकार थे। और ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज शिला भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्ष गुरु थे। भक्ति विनोद ठाकुर मानते थे कि ये हमारे गुरु जी है, जिससे हमारे जो परंपरा जो है, जिससे मंदिर में है, छवि है, तो प्रभुपाद के, इसके बाद भक्ति सिद्धांत, इसके बाद गोरकिशोर, इसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, इसके बाद जगन्नाथ दास बाबा जी, ये भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्ष गुरु थे, दीक्षा गुरु नहीं थे। और तो कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी के पास दीक्षा गुरु है लेकिन इसके बाद भी शिक्ष गुरु मिलता है और ये प्रदान हो जाता है और शिक्ष गुरु की कृपा से आगे जाता है। तो वहां पर भी तो भक्ति विनोद ठाकुर भी नित्य सिद्ध परिकार है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आता है तो हमको दिखाने के लिए कि कैसे शरण भजन करने के लिए, बद जीव के उद्धार के लिए यहाँ पर आ जाता है, जीव दोया देने के लिए आता है। ये नित्य सिद्ध परिकार जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, तो ये दूसरे बाबा जी से दीक्षा उन्होंने लिए थे, उनका दीक्षा गुरु थे मधुसूदन बाबा जी, ये भी प्रसिद्ध सिद्ध महात्मा थे और यहां पर भजन करते थे ब्रज में। सूर्या जहां पर सूर्य कुंड पे जो ये यहाँ पर सूर्य देव के मंदिर है राधा कुंड के पास, वहां पर भजन करते थे मधुसूदन दास बाबा जी, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भी वहां पर भजन करते थे। और लेकिन बहुत सालों तक यहाँ पर भजन करते करते तो एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी दूसरे को बोले थे कि तो हमको मायापुर जाना है, क्योंकि यहाँ पर भजन खाना बहुत मुश्किल है ब्रज में, तो हम वहां पर जाएंगे और आशा है कि महाप्रभु की कृपा से उत्तम अवस्था पर पहुंच सके। तो दिखाने के लिए कि हमको सबसे पहले चेतन महाप्रभु नवदीप धाम की कृपा चाहिए, इसके बाद कृष्णा वृंदावन धाम ब्रज धाम की कृपा मिल सकता है। और ये 6 महीने के लिए, इसके बाद नवदीप में रहते थे और 6 महीने में ब्रज मंडल में रहते थे। और ठाकुर भक्ति विनोद उन्होंने बोला था कि अमृत समय सबसे आगे रसिक वैष्णव थे जगन्नाथ दास बाबा जी में, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ब्रज मंडल में, पुरुषोत्तम क्षेत्र मंडल में, जगन्नाथपुरी में और नवदीप मंडल के सर्वोत्तम वैष्णव थे ये जगन्नाथ दास बाबा जी, इसलिए उनका नाम भी दिया है सर्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो ये जब भक्ति विनोद ठाकुर मायापुर में थे और वहां पर भगवान की प्रेरणा से, महाप्रभु की प्रेरणा से, तो ये वहां पर भजन करते थे और ये चैतन्य महाप्रभु के गुप्त स्थान प्रकट के लिए दिखाने के लिए, इसके बारे में लिखने के भी के लिए वहां पर थे भक्ति विनोद ठाकुर। और उसी समय किसी को नहीं मालूम था कि वास्तविक चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान कहां पर है, तो इसके खोज में थे भक्ति विनोद ठाकुर। और एक बार स्वानंद सुखद कुंज गुदुद्रीम के जहां पर भजन करते करते मायापुर की ओर वहां पर देखा कि वहां पर एक प्रकाश निकल रहा था, तो उन्होंने अनुभव किया थे और अनुभव किए थे कि यहां पर ये श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो वहां पर गए और इसके बाद उनको बुलाए थे ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, तो और सबको बताने के लिए, दिखाने के लिए कि ये वास्तविक जगह है। तो वहां पर आके जगन्नाथ दास बाबा जी उसी समय 140 साल के थे उनकी उम्र, और उनके सेवक थे, उनका नाम था बिहारी, तो उनको क्योंकि नहीं चल सकते थे उसी समय 140 साल के थे, एक टोकरी में रखते थे जगन्नाथ दास बाबा जी और कंधे पे रखते थे बिहारी उनके सेवक। वहां पर पहुंच गए और भाव विभोर होकर इस टोकरी से निकल गया और 1 मीटर 1.5 मीटर तक आनंद विभोर होकर नाचते थे कुछ समय के लिए। और ये भी उसी समय बोलते थे ये श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की कृपा से तो भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने तो स्थापित किया है और लिखा है, और अभी सबको मालूम है कि ये मायापुर की योगपीठ ये श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान है, ये जगन्नाथ दास बाबा जी की कृपा से भी प्रकट हो गया था। और तो उस वस्त्र पे भी, वृद्ध वस्त्र में भी तो भजन करते थे, अच्छी तरह से नहीं देख सकते थे लेकिन फिर भी भजन करते थे। और जब युवावस्था में थे और उनके उसी समय जब उम्र जरन आए थे, उसी समय ये जैसे बाबा जी लोग करते हैं और सन्यासी लोग करते, अच्छे तरह से चतुर्मास का पालन करते थे। और एक बार पहले मास में सिर्फ एक बार प्रसाद पाते थे शाम को, पहले मास में सिर्फ 4 केले खाते थे शाम को 1 महीने के लिए, दूसरे महीने में सिर्फ ये ग्वावा खाते थे, तीसरे महीने में सिर्फ जो जब पनीर बनाते थे, जो जब पनीर बनाता है जो बचता है ये पनीर का पानी ये पीते थे एक महीने के लिए रात को एक बार और चौथे महीने में ये केले के फूल लेकर उबाल के बिना नमक ये पाते थे एक बार तो कठोर तपस्या करते थे और भजन करते करते 1-2 लाख कभी कभी 3 लाख जाप करते थे महामंत्र के। तो एक बार जब ब्रज में थे तो एक बंगी से भिक्षा मांगते थे और चपाती मिले थे और दूसरे बाबूजी लोग कहते थे आप क्या कर रहे हैं बाबूजी महाराज, ये तो उचित नहीं है, हम तो बाबूजी से तो बाबूजी तो सिर्फ साजान से वैष्णव से ब्राह्मण से जो अच्छे तरह से साधु भजन करता है उनसे भिक्षा लेना है। आजकल भी ऐसा है जो अच्छे तरह से साधन भजन करता है भिक्षा मांगते बाबा जी या सन्यासी लोग तो सिर्फ 2-4 घर के पास जाता है जो जो सिर्फ उनके पास जाता है जो अच्छे तरह से भजन करता है, दूसरे के पास नहीं जाता है। तो ये देखे कि बांगी के पास गाय है तो ये उचित नहीं है, उनके पास गाय है तो क्यों ऐसे करते, अब ऐसे करते दूसरे भी से ऐसे करेंगे तो ऐसे करते हुए जब दूसरे भी ऐसे करता है तो नीचे गिर जाएंगे जरूर अपने पास से। तो बाबा जी ने बोला सुनो ये क्या करता है ये बांगी, ये हमेशा रोज रोज वृंदावन के जो गलियां और ये सब का तो जरूर से तो इससे क्या होता है तो वृंदावन के ब्रजराज इससे तो उसका अभिषेक हो जाता है तो ऐसे करते जब रोज रोज करते तो शुद्ध तो हो जाता है तो परम वैष्णव तो बन जाता है क्योंकि ऐसे दृष्टि तो थी। तो ये समझ लिया ये दूसरे बाबा जी लोग के ये जगन्नाथ दास बाबा जी उत्तम कोटि के वैष्णव है इसलिए उनके दूसरे सब दूसरे से भी प्रसाद पा सकते हैं और इससे तो फिर भी उनके जो भावना जो है तो हमेशा भगवान की सेवा में भगवान के चिंतन में है, उनकी गिरना की संभावना नहीं है लेकिन हमको ऐसा नहीं कर हम ऐसा नहीं कर सकते लेकिन वे ऐसे कर सकते हैं तो चुपचाप हो गए ये सब। तो और एक बार उनके सेवक उनको थोड़ा सा प्रसाद देते थे ये बाबा जी को, उसी समय एक 2-4 ये कुत्ते के बच्चे आए थे ये भी प्रसाद लेते थे तो उनको अच्छा नहीं लगा था ये उनके सेवक के उनको बगाए ये, तो उसी समय बाबा जी ने बोला नहीं नहीं ये भी ब्रिजवासी है ये भी दामवासी है उसको फिर से आने दो अन्यथा हम कुछ नहीं लेंगे, तो उनके साथ प्रसाद पाते थे। तो उनके बहुत सारे ये बहुत सुंदर लीला है और ये भी तो बाबा जी के रूप में थे और तो उनके पास बहुत सारे शिष्य थे ज्यादा से ज्यादा बाबा जी थे लेकिन विरक्त थे लेकिन दूसरे भी थे और लेकिन ज्यादा से ज्यादा तो उपदेश देते थे कि आपको स्त्री का संग तो जरूर छोड़ना है और पुरुष जो स्त्री का संग लेता है उनको भी छोड़ना है, उनका संग नहीं लेना है ये जरूरत है तो बाबा जी के लिए बहुत जरूरत है। लेकिन फिर भी जैसे अगर भक्ति विनोद ठाकुर भी उनके पास जाते थे, भक्ति विनोद ठाकुर परम वैष्णव थे तो गृहस्थ आश्रम में थे, जब अच्छा तरह से सारे भजन करता है उसी समय ऐसा सोचना भी उचित नहीं है। और जैसे महाप्रभु के ज्यादा उनके परिकार ज्यादा से ज्यादा तो ये गृहस्थ आश्रम में थे और परम वैष्णव थे लेकिन जो गृहस्थ है जो गृहमेदी है, जो इंद्र तृप्ति में लीन है, तो उनका संग तो जरूर छोड़ना है। लेकिन दूसरे जो है गृहस्थ जो है जो सेवा में लीन है, उनका संग छोड़ना जरूरत नहीं है। इसके बाद कहते थे कि हरि नाम जरूर करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। हरि नाम सेवा, हरि नाम करना है भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो हरि नाम ये जरूर करना चाहिए। और इसके बाद तीसरा उपदेश है, और कहते थे कि हाँ, कृष्ण का नाम का उच्चारण तो करता है, उनका भजन भी करना है, लेकिन और जरूरत है श्री चैतन्य महाप्रभु की भजन करना है। और इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव जरि गौर भक्त वृंदा, उनका नाम ये का उच्चारण भी करना चाहिए पंचतत्व के, और श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन करना ही चाहिए। तो सिर्फ उनकी कृपा से हम आगे जा सकते हैं और उत्तम अवस्था पर पहुंच सकते हैं। तो उनका देश भी था कि महाप्रभु की सेवा करने के लिए, कृष्णा की सेवा से पहले। और छोटा उपदेश था कि फिर से ये भी बताते थे कि ज्यादा से ज्यादा हाँ यहाँ पर गौणिताय के भजन करना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर एक सोनार गौरांग मंदिर है ब्रज वृंदावन में, ये राधारमान मंदिर के अंदर है, और ये वृंदावन में है, गोपाल बाग में है। तो वहां पर उनके जगन्नाथ दास बाबा जी सेवित गौणिताय मूर्तियां वहां पर है। वहां पर का दर्शन भी, उनका दर्शन मिल सकता है। और कहा जाता है कि कृष्ण लीला में एक मंजारी है, उनका नाम है रसिक मंजारी, तो उनसे भी प्रार्थना कर रहा है जिससे हम अच्छा तरह से भजन कर सके और उत्तम अवस्था पर पहुंच सके। श्री जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज की, श्री प्रभुपाद की, श्री गौणिताय की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर की। तो ब्रज में हर दिन तो एक महोत्सव है, कभी कभी अविभाव महोत्सव है, कभी कभी तिरुभाव महोत्सव है, तो विरहाभाव में तो ये भी एक प्रकार के महोत्सव है। और जब महोत्सव तो मनाता है तो उसी समय भी प्रसाद होना चाहिए। तो अब सब यहाँ पर आया तो सब प्रसाद ले लीजिए। हरे कृष्णा।